नहीं चची जान, एक मिनट। अरे चची जान, एक मिनट मुझे बात तो करने दीजिए। नहीं, मैंने कब ऐसी बात की है? माफ कीजिए, जो चुगलखोर आपके लिए ऐसी खबरें लाता है, जरूर उसने मेरी बातों से अपनी मर्जी का नतीजा निकालकर आपको बताया है, वरना किसी ने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया है। तमाम पैसे बैंक में हैं। अगर जरूरत हुई तो आपके बकौल में अपने हिस्से का पूरा पैसा कारखाने को ठीक करने पर लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं रात को आता हूं, वहां पर आपको पूरी बात बताता हूं। और कोई बात? ठीक है, खुदाफिज। बड़ा खबीस आदमी है, आस्तीन में सांप पाल रखा मैंने।
ओफो, इस पर इतना पैसा लगाया और ये दोबारा गड़बड़ कर रही है।
ये दोबारा चलाने की वजह से है, कभी कभी ऐसा करता है।
एक दो का मसला नहीं है, लेकिन अगर मुसलसल इस तरह करता रहे।
जरा आइए,
अभी आता हूं।
अभी आइए
सर। क्या हुआ?
माफ करना, क्या हो गया है?
कुछ नहीं है, तुम अपना काम करो।
अरे 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 यार, क्या मजदूरों के सामने मेरा हाथ इस तरह से खींच तो ठीक नहीं।
तुम्हें इंसान खाना मेरे दस्तरखान पे खाते हो और काम दूसरों के लिए करते हो। कब से चची के लिए जासूसी कर रहे हो?
चची, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा।
फजूल में मुकरने की कोशिश मत करो, सिर्फ तुम्हें पता था कि मैं कोई और काम करना चाहता हूँ।
अरे बेहसाद, आस पास अपने देखो, हो सकता है कोई और ये
कहीं से लीक नहीं हुई है। मनुचर साहब, अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस कारखाने से निकल जाओ, अभी इसी वक्त।
तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? समझते हो कि हिसाम फरुजान फर साहब हो, जो बात बात पर किसी को भी निकाल सकते हो? तुम हो आखिर कौन मुझे निकालने वाले, बताओ?
तुम निकलोगे या धक्के मार कर निकलवाऊं?
अच्छा, तो ऐसा है। ठीक है, मैंने बिल्कुल अच्छा किया जो उनसे कह दिया। ये थोड़ी हो सकता है तुम यहाँ अपनी मनमानी करो, जो चाहो वो करते रहो।
हाँ, सच कह रहे हो, मुफ्त का पैसा हाथ लगाया, बावले बन गए, कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लगे हो।
बेजाज साहब, मैं तुम्हारे पिछले सारे करतूत जानता हूँ, मुझे मुंह खोलने पर मजबूर न करो, वरना तुम्हारी रुसवाई होगी।
जाओ, जो कर सकते हो जाके करो।
ठीक है जनाब, चलता हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊंगा और तुमसे ज्यादा बेहतर पोजीशन पर। लेकिन अगर तुम मुझे काटने और अकेले सब कुछ हड़प करने की कोशिश करोगे तो याद रखना मैं जो कुछ जानता हूँ सब बता दूंगा। सब
हमेशा से सुनते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चलो।
अरे बदबख्त बेचारे, अगर मैंने सारी बातें बता दी तो वो लोग लाते मार कर निकाल देंगे तुमको वहां से। समझ लेना, तुमको जगह नहीं मिलेगी।
हेलो हेलो अरगबान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक है। सीना नहीं, अपने कमरे में है, काम कर रहा है, उसका ख्याल रखती हूँ। तुम्हारी आवाज़ क्यों ऐसी है? डॉक्टर साहब कैसे हैं? मेरी जान, हौसला रखो, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसके साथ आ रही हो? क्या डॉक्टर ने जवाब दे दिया है? तो फिर उनको सफर की इजाजत कैसे मिली है? ये तो है, जो चेहरा मैंने उनका देखा, क्या बताऊं। कितने दिनों के लिए आ रहे हैं? सच? ठीक है, देखो मेरी जान, तो पहले मुझे फोन करो ताकि मैं एयरपोर्ट लेने आऊं। हाँ हाँ, मैं सदके जाऊं, फोन का इंतजार करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज।
कौन था?
अरगबान।
अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बात करता हूं उसे।
ध्यान नहीं था।
क्यों, कुछ हुआ है क्या?
नहीं नहीं जानती, कह रही थी कुछ दिन बाद वापस आ रहे हैं।
वापस आ रहे हैं? लॉर्ड साहब ठीक हो गए हैं क्या?
कह रही थी कि बाकी का इलाज यही करवाएंगे, पता नहीं शायद वहाँ इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है।
क्या मतलब? डॉक्टर साहब गरीब तो हैं नहीं और उनके बच्चे भी वहाँ पर हैं, तो क्या वो अपने बाप पर दो पैसे खर्च नहीं कर सकते?
लोगों की गीबत क्यों कर रहे हो? हमें क्या पता कि उन्होंने पैसा खर्च किया है कि नहीं?
मुझे सख्त फिक्र हो रही है सीना, ऐसा ना हो बात कुछ और हो।
नहीं, परेशान ना हो, उनकी तबीयत जरूर ठीक हो गई होगी, अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दिया इसीलिए, परेशान ना हो।
पर सीना, उसकी आवाज ठीक नहीं थी, बहुत उलझी हुई थी।
थकावट की वजह होगी, पिछले दो हफ्ते से ना कुछ खा पी रही है, ना सो रही है, ना कुछ कर रही है, डॉक्टर साहब से मसरूफ होगी।
हाय मेरे खुदा, क्या ये मुमकिन है कि एक बार फिर हम बगैर किसी परेशानी के एक दस्तरखान पर जमा हो?
क्यों नहीं हो सकता, वो अम्मी वाला मजेदार सब्जी कोरमा बनाओ, सब इकट्ठा हो जाएंगे, सब जमा हो जाएंगे।
अब भी ऐसा लगता है वो आसपास ही है।
मुझे भी ऐसे महसूस होता है। अभी मैं उनकी याद में एक आइटम बजाता हूं तो जरा दिल को तसल्ली मिलेगी।
तुम दोनों को हुआ क्या है? इतना क्यों लड़ रहे हो आपस में? अरे भाई, तुम दोनों साले और बहने हुई हो, लोगों के सामने इस तरह से लड़ना अच्छी बात नहीं है।
नहीं फूफी जान, उसने अपनी बेवकूफियों से मुझे कहीं का रहने नहीं दिया है।
इसीलिए तो कह रही हूँ कि गुजारा करो, अगर उसने जाके बाहर को सब कुछ बता दिया तो फिर क्या होगा?
माफ कीजिएगा फूफी जान, मैं माजरा चाहता हूँ, जाके उससे कह दे कि जो कर सकता है कर ले, जो करना चाहता कर ले।
बेटा, तुम इस वक्त गुस्से में हो, ये मसला सिर्फ तदबीर और सोच से हल होगा।
असल में फूफी जान, चूंकि ये समझ गया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपको बीच में ले आया था कि आप सालिसी करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये काम ना करें। उस मनचर को जरा बड़ा होने दें, जरा अकलमंद होने दें। और कोई काम तो नहीं है? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
क्या हुआ? नहीं माना ना? मैं जानता था, आप गवाह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। जब ऐसा है तो मैं भी सारा कुछ उगल दूंगा ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तुम्हारा झगड़ा बेहसास से है, उसकी फैमिली से नहीं। और हाँ, ये बात भी याद रखना कि इस किस्से में तुम भी कसूरवार हो।
आप ही बताएं कि मैं क्या करूं फूफी जान। ठीक है सर आंखों पर, आपके एहतराम में मैं दो तीन दिन और सब्र कर लेता हूं। अगर बहजाद ने आकर माफी मांगी तो ठीक है, वरना ऐसा काम करने पर मजबूर हो जाऊंगा जो खुद मुझे भी नहीं।
प्लीज, जो कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में जरा सोच लें। इस खानदान को अभी थोड़ा सा सुकून मिला है, एक और मसले को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, इनका शिराजा बिखर जाएगा।
फूफी जान, आप सही कह रही हैं, सब कुछ बात ठीक है, लेकिन आप ही बताइए। ठीक है, मैं आप जो कहेंगे उसी तरह से करूंगा, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। अगर बहजाद ने मुझसे माफी मांग ली तो तब तो ठीक है, लेकिन मैं फिर वरना कुछ ना कुछ कदम उठा लूंगा उल्टा सीधा, आप समझ लीजिए।
नहीं, पता है क्या है, ये सब मेरा कसूर है, मैंने उसको बहनोई समझते हुए उसकी हैसियत से ज्यादा अहमियत दी है, हालांकि मनुचेर इतनी मदद के काबिल था नहीं।
लेकिन बहसा, तुम्हारे इस काम की वजह से नाराजगी पेश आ सकती है, मेरे ख्याल में उसे एक और मौका दे दो।
अब तो मौका ही नहीं बचा है, चचा मरहूम अगर उसका इतना ख्याल रखते तो सिर्फ मेरी वजह से, वरना उसे पहले दिन निकाल कर बाहर फेंक देते।
माफ करना बहसा बेटा, नाराज नहीं होना, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब बहाने हैं। तुम ये सब बातें सिर्फ मुझे सुनाने के लिए कह रहे हो।
अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे ख्याल में चूंकि मैं कभी कभी मनुचेहर से कारखाने के बारे में मालूमात लेती हूँ, इसलिए तुम नाराज हो।
जी नहीं, मैं इस बात पर नाराज हूँ कि मेरे होते हुए आप क्यों मनुचेर से मालूमात हासिल करती हैं?
इसलिए कि तुम सही तरह से जवाब नहीं देते हो मेरे बेटे, हर बात को टाल देते हो।
माफ कीजिएगा चाचा जान, आपने कब मुझसे पूछा जो मैंने जवाब ना दिया हो?
ये सब गलत फहमियां हैं, दूर हो जाएंगी।
नहीं, हल नहीं होंगी, जब तक मेरे और चाची जान के दरमियान बेएतमादी की दीवार हल है, ये आसानी से हल नहीं होंगे।
ऐसा ना कहे, इत्तेफाक से अम्मी आप पर बहुत एतमाद करती
हैं। अरे निगार, अगर एतमाद होता तो मेरे कामों के बारे में मनुचेर से ना पूछती।
मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कारखाने में क्या हो रहा है, ये कोई ज्यादा तवक्को तो नहीं है?
नहीं, ज्यादा तवक्को नहीं है चची जान, लेकिन आप मुझसे क्यों नहीं पूछती कारखाने के बारे में? मनुचर से क्यों पूछती हैं?
बेहजाद नाराज नहीं होना, लेकिन जब तक तुम्हारे चाचा मरहूम जिंदा थे तो कारखाने के ये हालात नहीं थे।
बिल्कुल वाज़ह है कि ये हालात नहीं थे, क्योंकि चाचा जान खुद अकेले मालिक थे और मैनेजर थे। वो जो बेहतर समझते थे वो फैसला करते थे और कदम उठाते थे। मैं बेचारा अगर लोन लेना चाहूँ तो उस पर सब वर्षा के दस्तखत चाहिए, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो वर्षा की मर्जी की जरूरत पड़ती है, एक एक के साइन लेने पड़ते हैं, सामान लेना चाहे तब भी सारे वारिसों की मर्जी की जरूरत होती है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरी इस कारखाने में हैसियत क्या है।
ये तो पूछने की बात नहीं है, तुम कारखाने के मैनेजर हो।
नाम की हद तक निगार साहिबा हाँ, लेकिन हकीकत में मेरी हैसियत रबर स्टैम्प से ज्यादा नहीं है। मैं इस तरह अपना काम जारी नहीं रख सकता।
तुम बताओ क्या करना चाहते हो?
मुझे कुछ नहीं करना चाची जान, आप मुझे एक मुकम्मल अथॉरिटी लेटर दें ताकि मैं पूरे इत्मीनान से कारखाने के उम्र अंजाम दूं, पूरी तवज्जो से काम आगे बढ़ाऊं। यही, ये कोई ज्यादा तवक्को तो नहीं है?
यानी अगर हम तुम्हें फुल अथॉरिटी दे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा?
क्या मतलब, इस बात का अथॉरिटी लेटर किस लिए चाहिए?
अम्मी जान खुदा के लिए बस करें, इन बातों से मसला हल नहीं होगा, हमें एक मुनासिब राह रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
इसरार ना करो बाहर, इसरार से काम नहीं बनने वाला है। जब तक चची जान मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी।
अम्मी जान इसमें कौन सी मेरी बात है, बहजाद आपका दामाद है, आपके बेटे की तरह है, कोई अजनबी थोड़ी है। एक अथॉरिटी लेटर दे देते हैं, शायद इस तरह फैक्ट्री के हालात भी बेहतर हो जाएं।
मुझे तो नहीं लगता है कि ये हमारे मसाइल हल कर पाएगा।
अम्मी ये आप क्या कह रही हैं?
मुझे अपनी आंखों पर भी एतमाद नहीं है, अगर इस आंख पर एतमाद होता तो दरमियान में नाक ना होती। हंस क्यों रही हो, हकीकत तल्ख है ना?
खुदा की कसम ये जिद और बेएतमादी सिर्फ मुश्किलात की ज्यादती का बायस बनती है। अगर फैक्ट्री के हालात बेहतर नहीं की तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और ये हमारा नुकसान है।
सच कह रही है ना अम्मी जान, भला हमारे बेहजाद के अलावा कौन है कि कारखाना उसके हवाले करे, अपना बंदा है, हमें फिक्र करने की भी जरूरत नहीं होगी।
ठीक है भाई, मैं इसको एक अथॉरिटी लेटर देती हूँ, लेकिन फुल अथॉरिटी के साथ नहीं, एक वो क्या कहते हैं टेम्परेरी अथॉरिटी, आरजी वकालत नामा या इसी तरह की कोई चीज। बहरहाल मैं इन मसाइल को ज्यादा नहीं समझती, बस चंद महीनों के लिए।
मुझे तो तुम दोनों के काम का कुछ पता नहीं चलता, एक दिन आपस में खुश होते हो एक दिन नाराज।
शुक्रिया,
तुम्हारा खाना ये है।
अरे सुरैया बेगम, सब्जियां खा के थक गया हूं मैं, इससे भी तो इंसान मोटा हो जाता है ना। हाँ क्या है, मुझे क्यों घूर घूर कर देख रही हो, क्या तुम्हारे ख्याल में कसूरवार हूं मैं?
बेकसूर भी नहीं हूँ। हाँ
हाँ हाँ, जाहिर है तुम तो अपने भाई की ही साइड लोगे ना, मैं तो गैर हूं ना, भाई जो कहे वही सही है।
ज्यादा भोलापन मत दिखाओ मनुचर, ये बताओ कि झगड़ा किस बात पर हुआ था?
माफ कीजिएगा अम्मी जान, मैं नेहत माजरत के साथ कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि आपके बेटे को बॉस बनने का भूत सवार हो गया है, बॉस की मेज पर बैठकर खुद समझता है सबको उसका हुक्म मानना पड़ेगा, सब उसके गुलाम है ये समझ रहा है।
उसके तौर तरीकों के बारे में नहीं पूछा है तुमसे, तुम्हारे और उसके झगड़े का पूछा है।
सुरैया मजदूरों के सामने मुझे डांटता है, बार बार मेरी तौहीन करता है, कोई नहीं जो उससे कहे कि बंदे खुदा इस कारखाने में मैं तुमसे ज्यादा अरसे से काम कर रहा हूँ, और इन मजदूरों के सामने मेरी इज्जत है एतबार है, तुम जिस तरह भी हिसाब करो मैं कारखाने की उम्र में उससे ज्यादा माहिर हूँ। खुदा चचा हिसाब को गरीक रहमत करे। वाकई चचा मुझे हमेशा मनुचेर खान कहकर बुलाते थे, लेकिन ये चलते फिरते जो मुंह में आता है मुझे कहता रहता है।
इतने किस्से कहानियां मत घड़ो मनुचेर, साफ साफ बताओ तुमने क्या किया है जो वो गुस्से में है।
अरे उसकी बहुत बेजा तवक्कुआत हैं। जब सुरूर साहिबा फोन करती हैं और कारखाने के बारे में मुझसे पूछती हैं, तो मुझसे कहता है कि मैं खामोश रहूं कुछ ना कहूं। अरे भाई खुदा के बंदे तुम्हें क्या हो गया है, तुम अभी अभी इस घर के दामाद बने हो, चचा जान भी तुम्हारा ख्याल रखते थे, तो फिर किस लिए लफड़े कर रहे हो, आखिर तुम किससे नाराज हो?
मनुचेर बेटा मैं सदके जाऊं, बहजाद अपने काम को खूब जानता है, शायद इसलिए नाराज है कि तुम उसके काम में टांग अराते हो।
अरे मुझे बेहजाद के कामों से क्या लेना देना, माजरत चाहता हूँ, पर उसको अपना काम आता भी कहाँ, अगर काम आता होता तो कारखाने का ये हाल ना होता जो आज है, आधी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, पता है कितने महीने से मजदूरों ने तनख्वाह नहीं ली है, بجائے اس کے کہ ان حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی چارہ کار ڈھونڈے، مجھ سے کہتا ہے جناب جو بھی اعتراض کرے اسے لات مار کے نکال دو۔ آپ ہی بتائیں، کیا خدا کو پسند ہے کہ میں ان بیچارے مزدوروں کو کارخانے سے نکال دوں؟
ٹھیک ہے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے منوچر، تمہارے پاس اتنا تجربہ اور مہارت ہے کہ بیکار نہیں رہو گے۔ تمہارے بقول تمہیں لینے کے لیے بہت سارے کارخانے لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟
میرا مذاق اڑا رہی ہو، ہنس رہی ہو تم؟
ارے مذاق کر رہی ہوں، تم کتنے نازک دل ہو گئے ہو منوچر۔
منوچر بیٹا ناراض مت ہو، مذاق کر رہی ہے، تم فکر مت کرو، میں خود بہزاد سے بات کروں گی۔ آ میرا بیٹا، پانچ چمچ اور لو، کچھ نہیں ہوگا۔
ارے امی کیوں کھائیں یہ، ہلکان ہو گئی ہوں میں اس کا، 15 کلو وزن کم کرتے کرتے۔
15.5 کلو۔
اور ہاں ایک خوشخبری بھی ہے، فاطمہ پھوپھی نے فون کر کے کہا تھا کہ کل جو ہے ہم بچی کو دیکھنے آ جائیں۔
ارے چھوڑو، ان حالات میں مجھے ان کاموں کو کوئی حوصلہ نہیں ہے، کسی اور وقت پر چھوڑو۔ بہت شکریہ امی جان، بہت مزے کھانا تھا، معاف کیجیے گا۔ میں ذرا آرام کرنے جاتا ہوں۔ میں کیا کہہ،
یہ کون سا وقت تھا ان باتوں کا؟ تم نے بچے اور یتیم خانے کی بات شروع کی، دیکھ تو رہی ہو کہ موڈ آف ہے۔
کیا کہوں امی، اچھا تمہیں بہزاد کو فون کر کے کہیں کہ منوجر کو اتنا تنگ تو نہ کرے وہ۔
بہزاد کھانا تیار ہے۔
بھوک نہیں ہے۔
پھر کیا ہوا؟
کچھ نہیں، بس تھوڑا تھک گیا ہوں۔
تو بد اخلاق کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے امی سے بات کر لی ہے، کل عدالت میں جا کے تمہیں اتھارٹی لیٹر دے دیں گے۔
تم بھی یہ سمجھتی ہو کہ مجھ میں اس کارخانے کو چلانے کی اہلیت نہیں ہے؟
یہ کیسی باتیں کر رہے ہو پاگل، مجھے یقین ہے کہ تم اس کارخانے کو چلا سکتے ہو۔
آج صبح منوچر سے میری تھوڑی توتو مے میں ہو گئی، باتوں باتوں میں اس نے مجھے گھر داماد کہہ دیا۔ پہلے تو مجھے بہت برا لگا، لیکن بعد میں سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے۔ آؤ باہر یہاں سے چلتے ہیں، اسی میں ہم دونوں کی عزت ہے۔
ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہزاد خدا کے لیے خود پر اپنا پریشر مت ڈالو۔
بھار
جی،
تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟
کیوں نہیں، بہت زیادہ۔
ٹھیک ہے، میرے لیے ہی کافی ہے۔
اٹھو اٹھو، کھانا کھاتے ہیں۔ آؤ نا بہزاد، کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔
السلام علیکم، میں پہنچ گئی ہوں۔
السلام علیکم صاحبہ. تسلیت عرض کرتا ہوں، خدا غری کی رحمت کرے.
شکریہ نعمت صاحب.
چقدر حال من بهتره از این حالی که این روزا میشه داشت، اگه دنیا هرچی که داشتم گرفت، ولی دست تو توی دستم گذاشت. بگو تا کجا میشه هم دست بود تو راهی که بیراه هم پای ماست، تو صبحی که تاریک تر از شبه، تو این شب که کابوس رویای ماست. با چشمات پر کن نگاه منو که یه عمر از وهم خالی تره، حقیقی ترین لحظه همو ببین که از آرزو هم خیالی تره. بگو تا کجا میشه هم دست بود تو راهی که بیراه هم پای ماست، تو صبحی که تاریک تر از شبه، تو این شب که کابوس رویای ماست.
ساتھ نہ ہوگی تو تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا. میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا ہے، خدا کے لیے مجھے اپنے دل کے سامنے شرمندہ مت کرنا.
اگر فرید ان کی منتظر ہو تو جان لو کہ اب وہ کبھی نہیں آئیں گے. اب ہم دونوں اکیلے ہو گئے ہیں. اظہر اشبی اور اظہر نیا بھی. اسی رات جب تم سے بات کر رہے تو ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے. پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزرے. کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا قیامت گزری. بہت شکریہ نعمت صاحب.
کوئی بات نہیں میڈم.
ہوم انتظار بہت سخت ہے. بہت سخت ہے کہ انسان امید کے ساتھ جائے اور نہ امید واپس لوٹ کر آئے.
جانتی ہوں میں صدقے جاؤں، سمجھتی ہوں.
ان کے بچے ان کو اپنی ماں کے جوار میں دفن کرنا چاہتے تھے. میں نے ان کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا، ان کو تنہا چھوڑ کر آ گئی.
وہ تنہا نہیں ہے ارغوان بہن، ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ ہیں.
ناصر نہ ہی تو بہت اصرار کیا کہ مزید ان کے ساتھ رہوں. بہت پیارے بچے ہیں لیکن میں تو تمہیں یہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی.
ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑ سکتی تھی. ہم سب کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہیے.
پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟
کیا فائدہ
आप लोग सिवाय दुखियारे होने के और क्या कर सकते थे।
मेरा जी चाहता था कि मेरा एल्बम पहले डॉक्टर साहब सुने, लेकिन अफसोस अफसोस कि ऐसा ना हुआ।
असीना भाई, तुमसे एक गुजारिश है।
बताओ।
अपने ग्रुप से बात करो, अगर उनका एतराज ना हो तो उस एल्बम को डॉक्टर फरीदुन के नाम से मंसूब कर दो। उनका बहुत जी चाहता था कि इस एल्बम में उनका भी थोड़ा सा हिस्सा हो।
जरूर।
हुमा।
हाँ मेरी जान।
मैं फरीदुन की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज तुम और सीना भी यहाँ आ जाओ और यहाँ मेरे साथ रहो। तुम्ही ने तो कहा कि हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं।
समझ रहा हूँ क्या करें, थोड़ा सा अपने बेटे का भी तो ख्याल रखिए। मुझे नहीं मालूम था कि मनुचर के इतने ज्यादा हामी हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आपकी खातिर है, लेकिन एक शर्त पर, कल से आके सिर्फ अपने काम से काम रखेगा और खबरें इधर उधर बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। अभी से कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, कहिएगा आ जाए। हाँ आएंगे वहां पर, फिलहाल तो बाहर की नाइट ड्यूटियां चल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। सुरैया को सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज।
माफ कीजिएगा
जी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
मैडम, मुझसे कुछ काम तो नहीं है?
नहीं, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी रजब साहब।
नेहा साहब हैं।
आपने पहले से वक्त लिया हुआ है?
नहीं, मैं उनकी पुरानी कुलीग हूँ।
आप किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं?
एक अदालती काम है।
अब तो वो वकालत नहीं करते, ये एक तजारती कंपनी है।
जी आप प्लीज उनसे कहें कि मैं आई हूँ, उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी।
आपका नाम?
अजरनिया।
जी जी आपने कहा क्या? निया
अरगवा ने आजर निया।
हाँ
देख तो रही हो कैसे शहर में जिंदगी गुजार रहे हैं। धुआं धुआं हर तरफ धुआं, लगता है मनु धुएं के नीचे दफन हो गए हैं। काश के कम से कम उन पुरानी और खटारा गाड़ियों को जमा कर लेते ताकि साफ सांस ले सकते। कब वापस लौटी?
एक महीना हो गया है।
सीना ने बताया कि आप अपने मियाँ के साथ बाहर गई थी, तजारती सफर पर गई थी या तफरीही?
कैसा सफर? फरीदुन के इलाज के लिए गए थे।
सच में? अच्छी बात है। उम्र रसीदा फर्द के साथ शादी करने में ये मसाइल तो पेश आते हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है?
हमारी खुशी के दिन बहुत कम थे। उन्होंने मेरी तवक्को से बहुत पहले मुझे अकेला छोड़ दिया।
मुझे वाकई बहुत अफसोस है, तसलियत अर्ज करता हूं। मुझे इस बात का इल्म नहीं था।
देख रहे हैं। बदकिस्मत इंसान हमेशा बदकिस्मत ही रहता है।
बदकिस्मती पर यकीन कर लेना बदकिस्मती से ज्यादा दर्दावर है। अब वक्त आ गया है कि अपने अफकार को बदलो। इंसान के जख्म उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। बेहतर है आप आराम से बिना किसी को बताए उनको बर्दाश्त कर लें।
मैं आपका मतलब नहीं समझी।
अल्लाह ताला डॉक्टर दाऊदी को गरीब के रहमत करे। अच्छे इंसान थे लेकिन हकीकत यह है कि तल्ख इत्तेफाक आपके लिए एक शीरीन जिंदगी का आगाज हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक गरीब वकील को एक ताकतवर और पैसे वाला इंसान बना दिया है। अब आपके पास ये मौका है कि मेहनत और किसी का एहसान लिए बगैर अपने तमाम आरजुओं तक पहुंच सकें, अपने पिछले शोहर बहजाद की तरह।
बहजाद?
हाँ हाँ, अपने चचा की वफात के बाद वो भी काफी मालदार बन गया, देख रही हो। इस खेल में तुम लोग जीत गए और मैं सब कुछ हार बैठा। पहले अपनी बेटी को जिसे तुम्हारे इसरार पर अपनी माँ के पास भेजा और उसके बाद वापस नहीं आई, और फिर अपने काम को जो तुम्हारी गलती की वजह से मेरे हाथ से निकल गया।
मुझे इन वाकयात का अफसोस है। देखिए, आपने कहा इसाम फुरजान मर गए हैं।
मैं समझा आपको इल्म होगा, 3-4 महीने पहले अल्लाह को प्यारे हो गए।
नहीं, मुझे इल्म नहीं था। कुछ पता है कैसे फौत हुए?
मौत किसी को बता के नहीं आती, उनकी अजल आ गई थी। अच्छा छोड़ें, आपने कहा कि मुझसे काम था।
हाँ जी हाँ, मुझे मीरास के मामले के मसले में किसी फर्द की जरूरत थी, पर जितना सोचा आपसे बेहतर कोई जहन में नहीं आया।
लगता है आप सही नहीं समझी। एक तजारती ऑफिस है, वकालत का दफ्तर नहीं।
आप सही कह रहे हैं, मैं गलत एड्रेस पर आई हूं। अब चलती हूँ।
आजर नया साहब, आप प्लीज बैठिए। मैंने खाने का ऑर्डर दिया हुआ है, आज दिन का खाना मेरे साथ खाए। काम की भी फिक्र ना करें, अभी भी मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वकालत कर रहे हैं और उनका वकालतनामा बातिल नहीं हुआ है। अजीब, आखिरकार ये हमारे दोस्त डॉक्टर दाऊदी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आजर नया साहबा, बारी बारी सबको जाना है, पता नहीं कौन पहले जाएगा और कौन बाद में, सिर्फ खुदा जानता है।
आप सही कह रहे हैं, हवा बहुत आलूदा है।
کدوم خستم، کدوم جنون، کدوم عشق، شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه،
شاید کاش بین این حسای مبهم بفهمم ما